देवियों सज्जनों, गीता के भगवत गीता के 13वें अध्याय के चर्चा हम कर रहे हैं। आज का श्लोक है, मेरे साथ मिलकर बोलिए, अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम् तत्वज्ञानार्थ दर्शनम् एतत् ज्ञानमिति प्रोक्त मज्ज्ञानं यदतोऽन्यथा। दोबारा बोलिए, अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम् तत्वज्ञानार्थ दर्शनम् एतत् ज्ञानमिति प्रोक्त मज्ज्ञानं यदतोऽन्यथा। अभी इससे पहले कृष्ण ज्ञानी के एक वाइज मैन, समझदार व्यक्ति जिसकी समझ ठीक है, ऐसे व्यक्ति के अलग अलग सिम्टम्स बता रहे थे, 20 सिम्टम तक आए। अभी कंक्लूड करते हैं इसी सिम्टम के साथ कि जो वाइज मैन है, एक समझदार व्यक्ति है जिसके समझ ठीक है, ऐसे व्यक्ति का क्या सिम्टम है। ये लास्ट श्लोक है, कंक्लूडिंग श्लोक है, जिसका ज्ञान आत्मज्ञान में हमेशा बनी रहती है। ये चैप्टर शुरू हुआ था कि ज्ञान क्या है, खुद को जानना, और खुद को जब हम जानते हैं तो वो तो दुनिया को भी समझ पाते हैं। दुनिया और मैं दो चीजों से बने हुए हैं, एक होता है मैटेरियल एलिमेंट है जिसमें मेरा शरीर बना है, जिसमें ये संसार भी बना है, दूसरा आत्मा है जो कॉन्शसनेस एलिमेंट है, आत्मा है जिसके बिना ये शरीर गल जाता है, सड़ जाता है, इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं बसता है। दो अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग क्वालिटी के हैं, अलग अलग नेचर के हैं, पर जब दोनों मिलते हैं तो मैं होता हूं। जब आप कहते हैं मैं, ये दो चीजों से बना हुआ चीज है, एक आत्मा है एक शरीर है। खाली शरीर डेड बॉडी होता है, वो दो दिन में बदबू करने लगता है, सड़ जाता है। खाली आत्मा किसी काम का नहीं होता है, ना वो देख सकता है, सुन सकता है, सूंघ सकता है, चल सकता है। तो जब आप और मैं कहते मैं हूं, हम दोनों का कॉम्बिनेशन है, दोनों का यूनियन है, क्योंकि हम बड़े यूनियन होकर के चलते हैं। और ये सृष्टि के शुरू से लेकर अनादि अनंत काल से, एंडलेस टाइम से लेकर एंडलेस टाइम तक चलते हैं। इसलिए धीरे धीरे हम भूल चुके हैं कि हमारी अपनी आइडेंटिटी क्या है। हम अपनी आइडेंटिटी, अपनी रिकॉग्नाइजेशन खुद के बॉडी से करते हैं, खुद के माइंड से करते हैं, ज्यादा समझदार हो ज्यादा इंटेलेक्ट से करते हैं। तो सही ज्ञान अभी तक उसने बताया कि शरीर अलग चीज है, आत्मा अलग चीज है, संसार अलग चीज है, परमात्मा अलग चीज है, दोनों के अपने अपने यूज है, दोनों के अपने अपने नेचर है, दोनों के अपने अपने क्वालिटी है। यही ज्ञान है, और जो ज्ञान को समझ लिया उसी को ज्ञानी कहते हैं। तो लोग जो किताबें पढ़ते हैं, प्रवचन सुनते हैं, गुरु से पढ़ते हैं, सीखते हैं, उन सबको ये लगने लगेगा कि हम सब ज्ञानी हो गए हैं, क्योंकि हमें पता हो गया है कि आत्मा क्या है और शरीर क्या है, जड़ क्या है, मैटर क्या है, और चेतन क्या है, कॉन्शसनेस क्या है, ये हम समझ चुके हैं। वो वैसा ही समझ है जैसा कोई प्रोफेसर स्विमिंग के बारे में, तैरने के बारे में एक्सपर्ट है, वो हजारों लेक्चर देते हैं स्विमिंग की, क्या हिस्ट्री है, कब से बनी, कितने तरह के स्विमिंग होते हैं, उसमें बॉडी का पोस्चर कैसे होता है, किस वक्त कौन सी तरह की स्विमिंग करनी चाहिए, कब नहीं करनी चाहिए। यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट्स में पढ़ाते हैं, अलग अलग जाकर के वर्कशॉप करते हैं। एक दिन समुन्द्र के किनारे खड़े थे, किसी ने धक्का दे दिया तो प्रोफेसर साहब डूब गए। एक अनपढ़ आदमी ने उनको उठाया, समुन्द्र से ला करके बाहर रखा, बोले आपको तैरना नहीं आता है? प्रोफेसर साहब बोले कि नहीं, मुझे नहीं आता है। तो आप कौन हो? मैं तैराकी का प्रोफेसर हूं। और जिस व्यक्ति ने बचाया उसको जिंदगी में कुछ नहीं पता, तैराकी का कोई किताब नहीं पढ़ा, कोई बुक नहीं देखा, किसी गुरु से नहीं सीखा, किसी वर्कशॉप से ट्रेनिंग नहीं लिया, उसको यह भी नहीं पता कि इसको तैराकी कहते हैं या क्या कहते हैं, इसकी क्या हिस्ट्री है, कितने तरह का होता है, बस इतना कि उसको समुन्द्र में फेंक दो, वो 24 घंटे तक तैरता रहेगा, हजारों तरह के करतब दिखाएगा। तो किताबी ज्ञान को जब हम ज्ञान समझने लगते हैं तो जिंदगी में बड़ी सारी प्रॉब्लम्स और समस्याएं आने लगते हैं। और खास करके जब हम खुद के बारे में किताबों से ज्ञान लेते हैं तो वो किताबी ज्ञान कभी काम नहीं आता है, और कभी भी कोई भी शास्त्र हमें उसको ज्ञान नहीं कहते हैं, वो जस्ट इंफॉर्मेशन है। हम कलेक्ट करते जाते हैं इंफॉर्मेशन को अपने आप को हेवी बनाने के लिए, दूसरों से बड़ा बनाने के लिए, उसका यूज कम होता है। वही ज्ञान ज्ञान होता है जो यूज में आता है, जो प्रयोग में आता है, जो प्रैक्टिस में आता है। अगर आपके 100 बार कहने पर भी बच्चा आग में हाथ डालता है, इसका मतलब अभी आप 50 बार बोलिए, 100 बार बोलिए, उसको अभी समझ आया ही नहीं कि आग क्या चीज होती है। अगर आप चाहते हो कि बच्चा आग में हाथ ना डाले, एक बार उसके हाथ को, उसकी अंगुली को आग के पास ले जाओ, अगले बार से ट्रेनिंग देने की जरूरत ही नहीं, अपने आप वो आग से दूर रखेगा। तो जो रियलाइजेशन है, जो खुद का एक्सपीरियंस है, वही नॉलेज होता है। तो इसीलिए जो बुकिश नॉलेज, जो किताबी ज्ञान है, वो आपका बेसमेंट बना सकता है, वो आपके फाउंडेशन बना सकता है, पर वो आपके लाइफ में कोई चेंज नहीं लाएगा जब तक प्रैक्टिस नहीं होता है। तो जो लोग प्रैक्टिस करते हैं, रियलाइज करते हैं खुद को कि मैं क्या हूं, संसार क्या है, उसमें भी समस्या आती है। इसीलिए श्लोक में कहा, अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम कंस्टेंटली, नित्य रूप से आपको उस जो ज्ञान आपको मिला, उस ज्ञान में आपको बने रहना है। आपका ज्ञान इतना स्टडी हो कि वो 10 मिनट में आधे घंटे में चेंज ना हो। जब हमारा कोई अपना आदमी मर जाता है तो हम फ्यूनरल होम या श्मशान जाते तो सारा ज्ञान याद आ जाता है, जो हमने गीता में पढ़ा, उपनिषद में पढ़ा, सत्संग में सुना, गुरु से सुना, जहां भी सुना, कि शरीर तो 2 दिन का है, मरना सबको है। फिर जब फ्यूनरल होम से घर आते हैं, नहा धो के झाड़ फूंक करके कपड़े पहन के खाना खाते हैं, फिर अपनी असली लाइफ में आ जाते हैं, कुछ पता ही नहीं चलता। ये जो थोड़ी देर की नित्य ज्ञान है वो किसी काम का नहीं होता, इसको हमारे यहां कहते हैं श्मशान वैराग्य। एक व्यक्ति को वैराग्य आ जाता है, दुनिया भर से बिल्कुल इच्छा ही टूट जाती है। कब? फ्यूनरल होम में, जब देखता है लोग मरते हैं, और जैसे ही वहां से हटता है तो सब फिर वही दुनियादारी में फंसता है। वो कंस्टेंटली आपके अंदर वो विचार बना रहना चाहिए जिस चीज को आपने जाना। शंकराचार्य जिन्होंने अद्वैतवाद की स्थापना की, और अद्वैत का मतलब होता है देर इज नो ड्युअलिटी, ओनली सिंगुलरिटी। ड्युअलिटी मतलब आप में कोई अलग नहीं है, सब ईश्वर है। सिर्फ अज्ञान के कारण, इल्यूशन के कारण हम दुनिया को अलग अलग रूप में देखते हैं। द होल वर्ल्ड इज जस्ट द गॉड, द सुप्रीम सोल। यह अद्वैत है। वो कीड़ा हो, मच्छर हो, पेड़ हो, पौधा हो, इंसान हो, सूरज हो, चांद हो, मिट्टी हो, सब ब्रह्म है, इल्यूशन के कारण हमें नहीं दिखता। तो शंकर समाधिस्थ हुए, उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। बनारस में वो केरल के ब्राह्मण थे, काशी में एक दिन गंगा के किनारे नहा करके वापस जा रहे थे, सामने एक चंडाल जो चमड़े का काम करते हैं अपने कुत्ते के साथ सामने से गुजरा। उन दिनों काफी हमारे यहां कास्ट सिस्टम बहुत खतरनाक रूप से था, आज भी है, पर काफी हद तक थोड़ा बैलेंस्ड होते जा रहा है धीरे धीरे। जैसे जैसे व्यक्ति का समझ बढ़ता है, एजुकेशन नहीं, क्योंकि डिग्रीधारी लोगों को हमने ज्यादा कास्टिस्ट देखा है, जैसे जैसे समझ बढ़ता है वो जाति इन चीजों को फिर फालतू समझता है, छोड़ता है। शंकराचार्य नहा करके गंगा से जा रहे थे, ब्राह्मण थे, तो देखा सामने चांडाल और कुत्ता है, बोले अपवित्र हो गया। दोबारा नहाने के लिए गंगा में गए, चंडाल हंसने लगा। शंकराचार्य दोबारा नहाकर आए तो चंडाल कुत्ते के साथ वहीं बैठा रहा, तो जब भी आए वो टकरा जाए। तीन बार तक ऐसा होने के बाद शंकराचार्य ने कहा, तुम मूर्ख रास्ते से हटते क्यों नहीं, वो पता नहीं ये ब्राह्मण कोई आता है, उसके सामने अपवित्र आदमी को, कुत्ते को भी तो लेकर नहीं आना चाहिए। चंडाल मुस्कुराकर बोला, लगते हो कोई साधु हो। पर सिर्फ कपड़ों से साधु बने हुए अभी तुम्हें ये ज्ञान हुआ ही नहीं कि सारे संसार में सब प्राणी के अंदर ईश्वर होते हैं। क्या ये कुत्ते के अंदर जो तुम्हारे अंदर है वो कुत्ते के अंदर नहीं है, जो वो तुम्हारे अंदर वो मेरे अंदर नहीं है? ये चीजें शंकराचार्य को बताने की जरूरत नहीं है, वही तो है पहला आचार्य जिन्होंने दुनिया को ये फिलॉसफी दिया कि आत्मा तो अलग, आत्मा परमात्मा कुछ नहीं, केवल सब जगह एक ही ब्रह्म है, परमात्मा है, तू भी ब्रह्म मैं भी ब्रह्म है। हजारों हजारों पेजों की किताब लिखा, उस शंकराचार्य को भी नित्य स्थिति नहीं पैदा हो पाती थी। कभी कभी वो अपने लिखे हुए फिलॉसफी को, रियलाइज्ड किए हुए ज्ञान को भी भूल जाते थे, वो अपने वो सामाजिक जो सोशियल टर्म है उसमें बन जाते थे। चंडाल ने लताड़ा तो शंकराचार्य को अपनी भूल की समझ आई कि कोई साधु होकर भी अभी भी अगर वो किसी प्राणी को अपवित्र समझता है, किसी जानवर को वो इम्प्योर समझता है, या किसी आदमी को अपवित्र समझता है, उससे ज्यादा मूर्ख कौन हो सकता है? और मैं अपने आप को ज्ञानी कहता हूं। इसका अर्थ नहीं है कि उनको समझ नहीं था। जिस व्यक्ति ने दुनिया को अद्वैत सिद्धांत दिया, नॉन ड्यूअलिटी की सिद्धांत दिया कि सब एक ही है, कोई अलग नहीं है, वो रियल लाइफ में कभी कभी सबको अलग अलग देखने लगता है, क्योंकि वो जो ज्ञान उसको मिला है अभी वो उसके अंदर परमानेंट नहीं बना है, वो इतना स्टेडी नहीं बना है कि 24 घंटे हर सेकेंड हर मिनट हर मोमेंट वो चीजें उसके अंदर घर कर जाए। अभी भी उसकी कास्ट उसको खा जाता है। वो ब्राह्मण घर में पैदा हुआ तो वो अपने ब्राह्मण का आकड़ लेके चलता है, वो इस खानदान में पैदा हुआ तो वो चीजें उसके अंदर आने लगता है। ज्ञानी व्यक्ति वो है जिसको जो समझा, जो उसने रियलाइज किया, जो 24 घंटे उसके साथ उसके मन में उसके विचार में हावी रहता है, उसका हर एक्शन हर प्रैक्टिस हर बिहेवियर हर सोच वो उससे रिफ्लेक्ट करता है। अगली चीज है तत्व ज्ञानार्थ दर्शन। जो ज्ञान, नॉर्मली ज्ञान तो हम बहुत लेते हैं, आप पेड़ को देखते हो, आपको कोई पूछे क्या है जी ये पेड़ है, पेड़ के पत्ते क्या है जी हरे हैं। तत्व ज्ञान किसको कहते हैं? जो फैक्चुअल नॉलेज है, जो रियलिटी तक पहुंचता है। पत्ता क्यों हरा है बहुत कम लोग सवाल पूछते हैं, बहुत कम लोगों के दिमाग में आता है। जिसके दिमाग में आता है वो अंदर गहराई तक जाता है, वो पता करता है पत्ते क्यों हो रहे हो, हरे होते हैं, ऊपर क्यों होते हैं, जड़ क्यों नीचे होता है, पेड़ का रंग क्यों ऐसा है, फल क्यों मीठा होता है, कड़वा होता है। ये कंस्टेंट प्रोसेस है दुनिया में, हर समय पर ऋषि मुनि लोग होते जाते हैं। आजकल मॉडर्न युग में आप उनको साइंटिस्ट कहते हो, आप इनको फिलोसोफर कहते हो, प्राचीन काल में हम उनको ऋषि कहते थे, जो तत्वों को समझते हैं, जो रियलिटी को खोजने के लिए अपनी जी जान लगा देते हैं। जब तक उनको वो अंतिम सोर्स पता ना चल जाए तब तक उनको शांति नहीं मिलती है। वो ज्ञान उसको नहीं मानते हैं जो पेड़ को देखकर ज्ञान होता है, वो ज्ञान उसको मानते हैं कि पेड़ कैसे बना, पेड़ का सोर्स कहां से। जब तक उनको पूरा चीज पता ना चले वो बेचैन रहते हैं। और उसके लिए जरूरी क्या है कि प्रैक्टिस करना जरूरी होता है, रेगुलर। जो हम जाने उसको अच्छी रोज प्रैक्टिस करते रहे, और जो जानने की इच्छा है खोदते रहे, खोदते रहे, कोशिश करते रहे, कोशिश करते रहे। जितने भी आपके दुनिया में साइंटिफिक या टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स हुए हैं, जितने भी नई नई चीजें आपके सामने आए हैं, ऐसा नहीं कि जिन लोगों ने आपके सामने उसको रखा, जिन्होंने इसको इनोवेट किया, वही सिर्फ उन्हीं का ही कंट्रीब्यूशन है उसको सामने लाने में। उससे पहले कितने सैकड़ों हजारों लोग, साइंटिस्ट, फिलोसोफर उस चीज के बारे में कोशिश करते करते फेल हुए। हजारों लोगों की जो फेलर है वो किसी आदमी की सक्सेस का स्टेयर बनता है, सीढ़ी बनता है, स्टेप बनता है। पर वो जो नित्यता बनी रहती है, उसके अंदर जो प्रैक्टिस करने की, करते रहने की नियमितता, नित्यता, रेगुलरिटी बनी रहती है, कोई ब्रेकडाउन नहीं होता है। एक छोड़ता है दूसरा वहां से पकड़ता है। हमारे लाइफ में भी यही है, जहां छूटे फिर वहां से पकड़ के चले। किसी भी चीज को हम लाइफ में एक्सेप्ट करना चाहते हैं, बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं, बड़ी अच्छी अच्छी बातें हैं ये सब, और कैसे प्रैक्टिस करें, करते तो होता नहीं है, फिर छूट जाता है, कैसे करें। एक ही उपाय है, कोई दूसरा उपाय नहीं है। कोई गुरु आकर आपको दवाई खिला के नहीं करा सकता। एक ही उपाय है कि आप कंस्टेंटली प्रैक्टिस करते रहो, करते रहो, करते रहो। अभ्यास का कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं होता है प्रैक्टिस का। इसी को हमारे भाषा में क्या कहते हैं, क्योंकि वो इतना महत्वपूर्ण है अभ्यास और प्रैक्टिस, कि ये आपके लाइफ में कुछ भी चेंज कर सकता है। इसीलिए हमारे हिंदू ट्रेडिशन में इसको साधना कहते हैं। कि आप साधना करते रहो, कोशिश करते रहो, जिस चीज आपको अचीव नहीं हो रहा है, जिस चीज को पाने की आप कोशिश करते हो, करते रहो, करते रहो, इसी को साधना कहते हैं। आजकल साधना ज्यादातर लोगों को संगीत वाले, वो आर्ट में जुड़े हुए लोग या स्पिरिचुअलिटी में जुड़े हुए लोग साधना शब्द का यूज करते हैं। आप जिस भी फील्ड में हो, आपका प्रोफेशनल फील्ड जो भी है, उस फील्ड में भी आपको आगे बढ़ना है, कहीं आपको समझ नहीं आती है, कहीं आपको पकड़ नहीं आती है, कहीं आपकी बात बनती नहीं है, सिर्फ एक ही उपाय है, प्रैक्टिस करते रहो, करते रहो, करते रहो, होता जाएगा। पर अगर सिर्फ वो बुकिश नॉलेज है, किताबी ज्ञान है, रटी रटाई बातें हैं, तो उसका कोई यूज नहीं होता है जब तक वो रियलाइजेशन में नहीं आता है। और कभी कभी जब हम बुकिश नॉलेज करते हैं, ऊपरी ऊपरी ज्ञान लेकर इंफॉर्मेशन को नॉलेज समझते हैं, वो कभी कभी नुकसान करता है। कभी कभी हम ज्यादातर समय वो हमें अपोजिट डायरेक्शन में लेता है। एक शराबी था, खूब शराब पीता था। उस गांव के ज्यादातर लोग शराबी थे, गांव के औरतें बड़े परेशान थी, आज भी भारत में बहुत सारे देखेंगे। मोस्ट ऑफ आज की तारीख में पूरा पंजाब ड्रग एडिक्टेड हो चुका है। ये 10-12 साल में इतनी सारे ड्रग्स की वहां एडिक्शन बने हैं, आज पंजाब में लोग त्राही त्राही मचा रखे हैं। तो ऐसे ही किसी गांव में सब शराब पी करके इतनी बर्बादी हो चुकी थी, लोग गरीब हो चुके थे, औरतों को पिटा जाता था, क्योंकि शराब पीने के बाद पुरुषों का कोई होश नहीं रहता था, कोई जो पैसा कमा के लाते थे उसको शराब में उड़ा देते थे। तो एक साधु आए जो शराब छुड़ाने की अभियान करते हैं, जो मूवमेंट चलाते हैं अल्कोहल से, ड्रग से छुड़ाने की, अपने लोगों के साथ उस गांव में डरा डाला, लोगों को समझाया, घंटों उन्होंने लेक्चर दिया शराब पीने से क्या नुकसान होता है, और जब तुम लोग शराब पीते हो किसको फायदा होता है? शराब बेचने वाला जो कल तक 4 रुपए वाला आदमी नहीं था, आज वो 4 करोड़ का मालिक है, और तुम लोग सब लखपति करोड़पति हजारपति जो भी थे आज कंगाल हो चुके हो। तुम्हें वो शराब पिला करके वो दुष्ट बदमाश लोग करोड़पति बनते जा रहे हैं और तुम गरीब बनते जा रहे हो। उसने शराब की बुराइयां की, शराब बेचने वालों की बुराइयां की। बहुत सारे लोग उठ के चले गए, वो प्रवचन चलता रहता है, एक आदमी बैठा रहा। बोलने वाले को लगा कि यह आदमी सही आदमी है, मेरी बात को सुन रहा है। पूछा, अब आप फाइनल कर रहे हो कि शराब छोड़ दोगे? तो आप इतने ध्यान से सुन रहे हो? बोले, नहीं, आपके प्रवचन से मुझे एक आइडिया आया कि क्यों ना मैं शराब बेचने लग जाऊं। देवियों सज्जनों, आप मंदिर में बैठे या नाइट क्लब में बैठे, आपका सोच जैसा होगा आप चीजों को उसी तरह देखने लगेंगे। आप सारे शास्त्र भी पढ़ ले, रावण तो सारे वेद उपनिषद दर्शन क्या छोड़ा था, खाली छोड़ा नहीं था, वो तो कमेंट्री भी लिखा था। आज भी रावण भाष्य मिलता है, भाष्य मतलब कमेंट्री। पर इतना बिगड़ा हुआ कैरेक्टर वाला आदमी था राम, तो उसके सामने कुछ भी पढ़ा लिखा नहीं था। जब रावण मरा तो राम रावण के पास जाते हैं, जब घायल होकर के पड़ा हुआ था, और हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, तुम ब्राह्मण हो, ज्ञानी हो, विद्वान हो, मरने से पहले कुछ ज्ञान दे जाओ जो तुम्हारे तुम समझते हो कि देने लायक है, क्योंकि तुम इतने बड़े ज्ञानी आदमी हो, तुम्हारे मरने के साथ ये ज्ञान भी चला जाएगा। रावण कहते, मैं आपको क्या ज्ञान दूंगा, नहीं, तुम्हारे से बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है। राम रावण से ज्ञान लेते हैं, पर ये कौन सा ज्ञान है? किताबी ज्ञान है जो जरूरी, हमारे फाउंडेशन के लिए जरूरी है, पर अगर वो कैरेक्टर में नहीं उतरा, अगर वो प्रैक्टिस में नहीं आया, अगर वो बिहेवियर में नहीं दिखा, अगर वो हमें ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाता है, तो फिर वो खतरनाक बन जाता है। वो फिर हमें दूसरे तरह के यूज करने के लिए मजबूर करता है। जिसने अपने में खुद को ठीक से जाना नहीं, जिसने ये रियलाइज नहीं किया कि मैं कितना पवित्र हूं, मैं दिव्य हूं, मैं आत्मा हूं, वो दूसरों में कहां आत्मा दिखेगा? कितना गीता पढ़े, उपनिषद पढ़े, दर्शन पढ़े, वेद पढ़े, धर्मशास्त्र पढ़े, कुछ भी पढ़े, वो कहां दिखेगा? तो पहली बात तो आपको ये रियलाइज करना जरूरी है कि मैं आत्मा हूं। दूसरी है कि जो आपने जाना उसको मेंटेन करना जरूरी है। जिस दिन आप जानेंगे कि मैं क्या हूं, फिर आप चींटी को भी नहीं मारोगे, क्योंकि आपको चींटी में भी दिखाई देने लगेगा वही आत्मा, वही दिव्यता। और वो मेंटेन करना भी जरूरी है। ये नहीं कि शाम को तो चींटी देवता लगती है, दिन में राक्षस लगता है। ऐसा नहीं कि सोमवार के दिन तो भगवान उतर आते हैं और शुक्रवार के दिन सो जाते हैं। ऐसा नहीं कि मंदिर जाने पर सच बोलना होता है, जैसे कि हम लोगों ने पाल रखा है कि भाई मंदिर में बैठ करके झूठ बोलते हो, मतलब है कि बाहर तो बोल सकते हो, मंदिर में मत बोला करो। पूरी दुनिया झूठ बोलने के लिए छोड़ दिया, बस इतनी एरिया को छोड़ दो। कितनी सस्ते में सौदा करते हैं देखिए, और कितनी चालाक हम लोग होते हैं। बुरा काम मंदिर में मत करो। क्यों भाई, इतनी छोटी सी जगह चुन रखी है गलत काम ना करने के लिए, पूरी दुनिया छोड़ रखी है बुराई काम करने के लिए। बुरा नहीं करना है तो बोलो भाई, बुरा मत करो, कहीं भी मत करो, छुप के नहीं, सामने नहीं, फ्यूनरल होम में नहीं, मंदिर में भी नहीं। मंदिर में ही क्यों नहीं करो? और उसका रिजल्ट क्या हुआ? दुकान में जितनी बेईमानी करना है करो, मंदिर में आकर के सब पाप माफ हो गया, भक्त बन जाओ। बाहर जाकर के कितने कत्ल करो, खून करो, मंदिर में आकर के सब भक्ति भक्ति भाव आ गया। जितने बड़े बड़े माफिया देखेंगे, डाकू देखेंगे, सब ये लाल तिलक लगा के घूमते हुए मिलेंगे। क्या है कि मंदिर सब भगवान के आशीर्वाद, वो देवी मां की पूजा किए बिना कत्ल करने चलते ही नहीं, खून करने चलते ही नहीं लोग। जिस दिन आपको रियलाइजेशन होगा, तो फिर आप ना मंदिर दिखेंगे, ना आप शराब खाना दिखेंगे, हर जगह आपको वो दिखेगा। ना आपको उस समय चिकन दिखेगा, ना आपके उस समय शेर दिखेगा, ना इंसान दिखेगा, हर जगह वो दिखने लगेगा। जिस दिन वो हर जगह दिखे और हर वक्त दिखने लगे, वो ज्ञान ज्ञान है, उसको जानने वाला ज्ञानी असली ज्ञानी होता है। बाकी तो यदा तो अन्यथा, इसके अपोजिट जो कुछ है, अदरवाइज जो कुछ है, वो ज्ञान नहीं है, वो इन्फॉर्मेशन है, कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन है। जैसे मीडिया आपको न्यूज देता रहता है, मीडिया को क्या फर्क पड़ता है कहाँ भूकंप आया, कहाँ भारी बाढ़ आया। वो पैसा लेते हैं, नॉलेज लाते हैं और बांट देते हैं। ये वैसे ही होते हैं, हमारा ज्ञान बढ़ता है, फिर हम उस ज्ञान से या अपना पोस्ट बढ़ाते हैं, या अपनी बैंक बैलेंस बढ़ाते हैं, या अपना नाम बढ़ाते हैं, या अपना फेम बढ़ाते हैं, अपने कुछ ना कुछ बढ़ाते हैं, पर ज्ञान से कुछ ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है। जिस ज्ञान से जीवन में कोई बदलाव ना आए, वो ज्ञान सिर्फ बैंक बैलेंस होता है। वो आपके आपकी सोशल रिपुटेशन को बढ़ा सकता है, आपके इकोनॉमिकल ये को बढ़ा सकता है, पर वो लाइफ के लिए यूजलेस होता है। जो इसको जानते हैं वो असली ज्ञानी होते हैं। अगले श्लोक पर चलिए। ज्ञेयम् यत् प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत् परम ब्रह्मा न सत्तन्ना सदुच्यते। दोबारा बोलेंगे। ज्ञेयम् यत् प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत् परम ब्रह्मा न सत्तन्ना सदुच्यते। कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, आई विल एक्सप्लेन यू दैट, जो ज्ञेय, जो जानने लायक है, ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज मैं आपको बताने जा रहा हूं। विच वन गेन्स द नेक्टर ऑफ इमोर्टलिटी, जिसको आप जान लेने पर तुम अमृत को पा जाओगे, तुम नेक्टर को पा जाओगे, तुम इमोर्टलिटी को पा जाओगे। और वो क्या चीज है? वो है अनादि है, विच इज बिगिनिंगलेस, परम ब्रह्म है, जो सुप्रीम बींग है। वो ना सत है, वो ना सत है, ना वो एग्जिस्ट है, ना वो नॉन एग्जिस्ट है, ना वो एग्जिस्टेंस है, ना वो नॉन एग्जिस्टेंस है। कुछ चीजें शास्त्रों में आपको बड़े उठपटांग लगेंगे, बड़े कॉन्ट्रडिक्टरी लगेंगे। पहले देखते हैं ज्ञेयम् यत्तत्, मैं तुम्हें वो बोलने जा रहा हूं जो जानने लायक है। वैसे तो हमें जानने की इच्छा बहुत चीजें को होती है, ऐसी कोई चीज नहीं है जिसको हमें जानने की इच्छा नहीं। रोड में भी गाड़ी चलाते हैं, कहीं चार लोग मिलकर हल्ला मचाते हैं तो भी हम देख लेते हैं क्या हो रहा है। ये भी जानने की इच्छा ही है, क्यूरियोसिटी है। बिना सोचे कि इसका क्या यूज है तो भी हम जानने की कोशिश करते हैं। और यकीन मानिए, जीवन भर में हमने जितने चीजों को जानने के लिए मेहनत की है, अगर आप उनकी लिस्ट बनाए, आपने कितने कितने चीजें जानने की कोशिश की और जाना, उसमें से आपको पता चलेगा आपके लाइफ में उसका 70-80% बेकार था। वो ना जानते तो आपके लाइफ में कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके पड़ोस के मियां बीवी के बीच में क्या झगड़ा हुआ जान के आपके लाइफ में क्या क्या बदलाव आता है? पर हम जानने की कोशिश करते हैं क्या पड़ोस में होता है। अब कोशिश करें, 80-90% चीजें आपको ऐसे मिलेगा जो लाइफ में नहीं जानते तो लाइफ में कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हम जानने के आतुर रहते हैं, हर चीज जानने की कोशिश करते हैं। बच्चा होता है ना, छोटा बच्चा पूछता रहता है, पापा ये क्या है, मम्मा ये क्या है। आपके आंसर देने से पहले ही उसको सुनना नहीं है, वो दूसरा सवाल डाक देता है। अब आंसर दो, कभी कभी सुनता है, कभी कभी नहीं सुनता। बिना पूछे, बिना समझे इसका यूज क्या है, हम जानते चले जाते हैं, जानते चले जाते हैं। किताबें 50 तरह की किताबें पढ़ते चले जाते हैं, ये बिना जाने कि इसका मेरे प्रोफेशन में, मेरे लाइफ में, मेरे किसी भी तरह के मेरे इसमें कहीं कोई काम आने वाला है। बिना सोचे समझे जानते चले जाते हैं, और इतना ज्यादा स्टॉक कचरा भर जाता है ब्रेन में। असली चीज जानने को टाइम आए तो दिमाग खुलता नहीं है। पूछते चले जाते हैं, कभी कभी तो बड़े लोग भी करते हैं, आपको पूछते चले जाएंगे, आप आंसर देने से पहले ही वो खुद आंसर देने लग जाएंगे। और कभी कभी हम जैसे लोगों को जो पढ़ाते हैं बोलते हैं, ज्यादा ऐसे लोगों के साथ डील करना पड़ता है। लोग एक सवाल पूछते हैं, जवाब सुनना नहीं होता है उनको एक्चुअली, वो जवाब देने से पहले कि वो खुद ही चार पांच आधे घंटे का लेक्चर हमें ही सुना देते हैं। दुनिया में आपको देखेंगे, जब आप पार्टी करते हैं, ग्रुप में बैठते हैं, बातचीत करते हैं, देखेंगे कुछ लोग मजबूरन सुनते हैं। क्यों सुनते हैं पता है? कि कब तुम चुप हो और मैं बोलने लग जाऊं, नहीं तो कहेंगे ये बोलता रहता है, और एक बार पकड़े आ गई मेरे बोलना शुरू हो गया, फिर बंद होने का नाम ही नहीं जाता है। वो पूछते इसीलिए नहीं कि आपसे कोई जानकारी चाहिए, पूछते इसीलिए कि कुछ जानकारी और देना है, एक माहौल बनाना है जिसे मैं बोल सकूं। इसीलिए जो ज्ञान लेने की जो तरीका है वो भी हमने अजीबो अजीब बना रखा है, मजबूरन सुनना पड़ता है। सुनना इसीलिए नहीं कि कुछ सुनना है, जानना है इसीलिए कि हमें भी बोलना है। कभी कभी सुन लेते हैं इसीलिए कि अच्छा कोई पॉइंट बन जाए तो हम भी किसी को सुना लें लायक बन जाएं। गीता में कृष्ण कहते हैं जानने लाय यज्ञात्वा अमृतम अश्नुत। एक छोटा सा डेफिनेशन देते हैं, ज्ञान किसको कहते हैं, बोले जिसको जानने के बाद तुम्हें कुछ जानने लायक और बचे ही नहीं है, जिसको जानने के बाद तुम इमोर्टल बन जाओ। भाई इमोर्टल कैसे बनेंगे? पैदा हुए तो मरेंगे, शरीर तो नष्ट होगा ही होगा, और जब शरीर नष्ट हो जाता है उसी को मौत कहते हैं, उसको मृत्यु कहते हैं। इमोर्टैलिटी, शरीर से हमारा कोई लेन देन है ही नहीं है, हमें पता है। हमारे यहाँ तो जो किसान भी है, जो रिक्शा भी चलाता है, उसको भी पता है ये शरीर दो दिन का है। वो कोई गीता नहीं पढ़ा, उपनिषद नहीं पढ़ा, कोई शास्त्र नहीं पढ़ा। भारत में किसी भी मूर्ख से मूर्ख आदमी, गांव से आदमी को पूछ लीजिए, पढ़ा लिखा आदमी तो आपको हिंदू धर्म के नाम पर पता नहीं कौन सा फिलोसफी बताते जाएगा, कहां कहां से पढ़ के। पर एक अनपढ़ आदमी को भी उसके डीएनए में फंसा हुआ इतनी तो वो जानता है कि आत्मा क्या है और शरीर क्या है, जीवन क्या है। जिसको जानने के बाद फिर आपको जानने को कुछ बचे ही नहीं, क्योंकि आप वो पा चुके हो जो किसी को मिल नहीं सकता, बहुत मुश्किल से मिलता है, अमृत की प्राप्ति, इमोर्टैलिटी की प्राप्ति। दुनिया में कुछ भी हम करते हैं सज्जनों देवियों, आपको पता है उसके जड़ में, उसके रूट में कि कोच कौन सा चीज काम करता है, द फियर ऑफ डेथ, मौत का डर। इवन आप पैसा भी कमाते हैं, इवन आप पढ़ाई भी करते हैं, आप कुछ भी लाइफ में करते हैं, अगर डीपली जाओ उसकी डीप सेंस में वो मौत का डर होता है। जब ज्यादा पैसा हमारे पास होता है ना, हमें थोड़ी तसल्ली होती है, मृत्यु मेरे पास लेट आएगा, देर आएगा, क्योंकि मैं पैसे से कुछ कर सकता हूं। गरीब आदमी क्यों डरा हुआ रहता है? उसको पता है कि मेरे साथ कुछ हो जाए, मेरे पास पैसा नहीं है बचाने के लिए। ज्ञानी आदमी को क्यों थोड़ा कॉन्फिडेंस रहता है? उसको पता है कि मर कुछ होगा तो मुझे पता है कि इसका क्या रिमेडी है, इसको कैसे सोल्यूशन निकाला जाए। अज्ञानी आदमी क्यों ज्यादा डरा हुआ रहता है? उसको पता ही नहीं कि क्या हो जाए, मौत आ गया तो मैं क्या करूं। जिसके पास घर नहीं वो क्यों ज्यादा डरा हुआ रहता है? तूफान आएगा तो मैं मर जाऊंगा, मेरा क्या होगा। जिसके पास घर है वो क्यों ज्यादा शांति से रहता है? क्योंकि उसको पता है कि तूफान आएगा तो शायद मैं बच जाऊं। आप अगर डीपली स्टडी करें आपको पता चलेगा, लाइफ में आप कुछ भी करते हैं, कुछ भी करते हैं, कुछ भी होर्डिंग करते हैं, रखते हैं, उसके पीछे, उसके रूट में हमारे मौत के प्रति डर समा रहता है। इसको हमारे दर्शन शास्त्र में अभिनिवेश कहते हैं। आपकी पूरे लाइफ की जो 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 सोच है, जो समझ है, जो एक्टिविटी है, उसके पीछे ये मौत का डर, क्योंकि हमें पता है कि ये पक्का है। हमारा धन, पावर, जब पावर ज्यादा होता है आदमी मृत्यु की चिंता कम होती है, उसको पता है मैं पावर यूज करके कुछ कर सकता हूं। पर जो समझदार व्यक्ति है, जो ज्ञानी व्यक्ति है, उसको पता है, जो ज्ञान है वो कि शरीर नष्ट होता है, मैं वो हूं जो शरीर के नष्ट होने पर भी सरवाइव करता है। मैं शरीर के नष्ट होने पर भी दूसरा शरीर ला सकता हूं। ज्ञानी आदमी शरीर के क्षय होने के साथ भी खुश होता है कि उसको पता है शरीर के नष्ट होने पर भी मैं तो अमर हूं, अजर हूं। वो उस आनंद को लेना जानता है। शरीर हर वक्त आपका, ऐसा नहीं कि आप 80 साल में बुढ़े हो जाते हैं, वो तो जिस दिन आप पैदा हुए उसी दिन से बुढ़ा होना शुरू हो जाता है ना। ऐसा थोड़े कि 80 साल का डेट आ गया और आप अचानक बुढ़े हो गए, ऐसा थोड़े होता है कि आप 20 साल का होकर अचानक जवान हो गए। एवरी मोमेंट यू आर लॉसिंग समथिंग एंड यू आर गेनिंग समथिंग। जो आप लूज कर रहे हैं, लॉस कर रहे हैं, वो आपका मृत्यु है। जो आप गेन कर रहे हैं, वो आपका जन्म है। ये कॉन्स्टेंटली चलता रहता है। ये शरीर क्षय, बचपन, आपका शरीर का बचपन वाला रूप नष्ट होता है तभी जवानी का रूप दिखता है। जवानी का नष्ट होता है तभी मैच्योर बॉडी दिखता है। वो मैच्योरिटी खत्म, जिसको आप प्राउड कहते हैं, होती है तो बुढ़ापा आती है। हर वक्त शरीर में क्षय चलता रहता है। आम आदमी शरीर के क्षय देख करके परेशान होता है। वो धन दौलत ज्ञान पोस्ट कमाने लगता है जिससे मौत के साथ वो लड़ सके। और ज्ञानी आदमी इसको बेवकूफी समझता है। वो एंजॉय करता है कि शरीर नष्ट होता जाए। ये उसका नेचर है, शरीर को डिकेइंग होना, नष्ट होना। वो शरीर के क्षय के साथ साथ आनंदित होने लगता है कि मैं अजर अमर नित्य बना रहूंगा। शरीर के बिना मेरे नुकसान कम होंगे, शरीर के साथ मुझे ज्यादा नुकसान होगा। तो शरीर के क्षय होने पर भी वो आनंद तभी आता है जब आपको ज्ञान होता है। और वही ज्ञान ज्ञान होता है जिसको जानने पर आपको आनंद की प्राप्ति हो। वो आनंद की प्राप्ति तभी होती है जब आपको मौत का डर ना रहे। और मौत का डर जब तक है, आपकी हर खुशी में भी थोड़ी बहुत गड़बड़ियां रहती है। जब बहुत खुशी आती है तो भी डर लगता है, पता नहीं क्या ना हो जाए। जब दुख है तो भी डर लगता है, जब खुशी होती है तो भी डर लगता है। क्यों? ये कौन सा डर है? मौत का डर है। पता नहीं इतनी सारी खुशी आई पर मैं जी पाऊंगा कि नहीं, भोग पाऊंगा कि नहीं। क्योंकि हम देखते हैं हमारे आसपास, पड़ोस, इधर उधर कैसे हजारों लाखों लोगों को हम देखते हैं जो जवानी में चले जाते हैं। जब जिनको जो अचीवमेंट जिस दिन करना था उसी दिन चले जाते हैं। लाइफ में जब सब कुछ मिल गया तो उसी दिन वो उसको भोगने लायक नहीं रहते हैं। ये लाइफ में हम देखते हैं, डर बना रहता है। पर जब व्यक्ति उस ज्ञान को पाले जो जानने लायक है, जिसकी चर्चा वो कर रहे हैं, तो फिर वो मृत्यु के डर से पार हो जाएगा तो अमृत को प्राप्त करेगा। वो कौन है तत्व? वो अनादि है, जिसका कोई शुरुआत नहीं है। जब कुछ भी नहीं था वो तब भी था वो परमात्मा। जब सब कुछ था वो सबके अंदर है। जब कुछ भी नहीं था उससे पहले भी था वो। उसका कोई आदि नहीं, आदि बिगिनिंग नहीं, क्योंकि उसका कोई एंड नहीं है। बिगिनिंग उसी की होती है। आप एक छोटी सी स्टिक लीजिए, बड़ा सा स्टिक लीजिए, उसका एक शुरुआत है तो इसका एक एंड है। पर आप एक गोल चीज लेंगे, सर्कल चीज लेंगे, क्योंकि आप उसकी शुरुआत कहीं ढूंढ नहीं पाएंगे तो आप इसका एंड भी कहां ढूंढेंगे। ये लाइफ भी एक सर्कल है। ये परमात्मा भी ऐसे बिगिनिंग लेस है तो एंड लेस है। आप भी उसी तरह अनंत है, अनादि है। आपका कोई आदि नहीं, अंत नहीं, क्योंकि हम दूसरे सांसारिक चीजों में समझ नहीं पाते हैं इसीलिए। और वो जो ब्रह्म है, परमात्मा है, वो बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। वो सत भी है और असत भी है। वो एग्जिस्ट भी करता है, वो नॉन एग्जिस्ट भी है। एग्जिस्ट इसीलिए करता है क्योंकि आप दुनिया में कोई भी चीज दिखो उसमें उसकी झलक दिखेगा आपको। आप फूलों की खूबसूरती देखो, फलों की अलग अलग स्वाद देखो, पक्षियों के अलग अलग राव देखो, इंसानों के अलग अलग रूप देखो, संसार का कोई भी रूप देखो, उसमें परमात्मा की शक्ति, उसका सामर्थ्य, उसकी एबिलिटी, उसकी क्रिएटिव नेचर, उसकी आर्ट आपको झलकेगा। झलकेगा क्यों? कोई भी ह्यूमन बीइंग ये नहीं कर सकता। कोई भी ह्यूमन बीइंग समुंदर नहीं बना सकता, पहाड़ नहीं बना सकता, खट्टे मीठे फल नहीं बना सकता, इंसान के खून हड्डी इंसान का स्ट्रक्चर नहीं बना सकता। वो कोई बना रहा है, वो दिखता है। इसीलिए मजबूरन हम माने ना माने हमें कहना पड़ता है कि कोई है जो इन सबको इतने सिस्टोमेटिकली, अगर आप कहेंगे ये सब नेचर से होता है, नेचर अपने आप में इतने सिस्टोमेटिक कैसे होगा? कोई जड़, कोई मैटर, कोई अनकॉन्शियस चीज कैसे सिस्टोमेटिक होगा, कैसे रूल्स फॉलो करेगा? रूल्स तो कोई कॉन्शियस ही फॉलो करता है या कराता है। तो यकीनन हमें ये यकीन होता है कि कोई है, पर समस्या है कि क्योंकि हम उसको कभी देख नहीं पाते, सुन नहीं पाते, सुंग नहीं पाते, जैसे हम बाकी चीजों को करते हैं, इसीलिए डाउट 24 घंटे बना रहता है सचमुच क्या वो है। इसीलिए वो सत भी है, वो एग्जिस्ट भी करता है, वो नॉन एग्जिस्ट भी करता है। नॉन एग्जिस्ट तब तक है जब तक हम सेंसेस के द्वारा उसको ढूंढने की कोशिश करते हैं। जिस दिन आप अपने इंद्रियों को छोड़ दोगे, उसको ढूंढने के लिए सेंसेस को यूज करना छोड़ दोगे, उस दिन आपको पता चलेगा। पर प्रॉब्लम है, जिस दिन आपको पता चलेगा आप बोलने लायक नहीं रहोगे, क्योंकि आपके लिए वो लैंग्वेज नहीं होगी, आपके पास वो भाषा नहीं होगी बताने के लिए। कोई कुछ किसी को समझा सकता है नमक का स्वाद कैसा होता है, रसगुल्ले का स्वाद कैसा होता है? कोई किसी को समझा सकता है? असंभव है। कोई दुनिया की ताकत नहीं कि कोई मुझे समझा दे कि मैं आपको समझा सकूं नमक का स्वाद कैसा होता है। नमक छोटी सी चीज है, आपको खाना पड़ेगा, एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, रियलाइज करना पड़ेगा, तभी पता चलेगा। इसीलिए उपनिषदों की भाषा में आपको कॉन्ट्रेडिक्टरी दिखेगी। अगली बार भी आप सुनेंगे अगले दो चार श्लोकों में कितनी कॉन्ट्रेडिक्टरी शब्दों के को यूज करना पड़ता है ऋषियों को, क्यों क्या करें, उनकी लैंग्वेज की एक लिमिटेशन है। और जिस चीज को उन्होंने रियलाइज किया उसके लिए उनके पास शब्दों की कमी पड़ती है, तो वो कंट्रडिक्टरी वर्ड्स को लेते हैं यूज करने के लिए। अगले बार इसकी चर्चा करेंगे, परमात्मा की ये जो विरोधाभासी छवि है, जो कंट्रडिक्टरी फॉर्म है, उसकी चर्चा आगे करेंगे। आप सबने ध्यान से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति शांति।